विश्वरूप प्रभु।
शत्रु मानकर तो दोनों हतो मारे गए। हरे कृष्ण। अनुवाद इस प्रकार से है, इस प्रकार भगवान विष्णु दोनों पार्षद जो नीति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे मारे डाले गए। ब्रह्मवश उन्होंने सोचा था कि हर एक के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, नरसिंह देव तथा प्रहलाद महाराज संबंधी वार्ता तब शुरू हुई जब महाराज युधिष्ठिर ने नारद से पूछा था कि शिशुपाल किस तरह कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। शिशुपाल तथा दंतवक्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु भी थे। यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार विष्णु ने दोनों पार्षद तीन विभिन्न जन्मों में उन्हीं के द्वारा मारे गए। सर्वप्रथम वे हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु असुर हुए। ओम अज्ञान जिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्री युतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सातवें स्कंध की दसवें अध्याय की कथा चल रही है, 35वां श्लोक है। भक्त प्रवर प्रहलाद द ग्लोरियस डिवोटी ऑफ कृष्णा श्री प्रहलाद। तो प्रभुपाद जी ऐसे वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में कि ये जो कथा है सातवें स्कंध की, ये शुरू होती है युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के समारोह में। फिर युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था, दुर्योधन ने उनको जंगल का राज दिया, जंगल को उन्होंने तोड़कर इंद्रप्रस्थ बनाया बहुत सुंदर, और वहां पर उनका राजसूय यज्ञ हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है। और उस समय शिशुपाल बहुत निंदा करता है, बहुत ज्यादा निंदा करता है, और भीमसेन और अर्जुन सब लोग क्रोधित होकर अपने शस्त्र उठाकर उनके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं आप शांति रहो, मैं गिन रहा हूं। क्योंकि उनको शिशुपाल को जब उनका जन्म हुआ तो उनको नाटक मेरा विचार है याद है, तीन सर और तीन पैर थे, उनको बहुत भयंकर अवस्था थी। माता बहुत दुखी हो गई थी, वो कुंती देवी की बहन थी, कजिन सिस्टर, बहुत दुखी हुई। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि जिसके भी गोद में ये जाएगा और जिसके गोद में जाने के पश्चात इसका दो सर और एक पैर निकल जाएगा और वो अमर हो जाएगा, उसी के हाथों उसका वध हो जाएगा। तो बहुत लोगों की गोद में उनको रखा गया, बहुत डर डर के आखिर में कृष्ण आए और कृष्ण की गोद में उनको रखा गया। तो उनके वो जो एक्स्ट्रा पार्ट से वो खत्म हो गए। तभी माता बहुत रोई, अरे तुम तो मेरे पुत्र समान हो, क्योंकि मेरे बहन के बेटे हो कृष्णा। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करना, मेरे भाई हैं, आपकी बुआ हैं, हम आपको वरदान देते हैं कि उनके सौ अपराध में माफ करूंगा, लेकिन सौ अपराध के बाद भी फिर मैं माफ नहीं करूंगा। तो वहां सोचते हैं कि सौ अपराध तो बहुत होते हैं, इतने अपराध तो मेरा रिटायर नहीं कर गया। लेकिन शिशुपाल जी ने इतने द्वेषी थे भगवान के, इतने द्वेषी थे कि उनका जिह्वा जो था वो हर समय केवल भगवान की निंदा में ही मग्न था। तो उन्होंने बहुत अपराध किए, तो कुछ मेरे ख्याल से 90 के ऊपर अपराध हो चुके थे, जब राजसभा का अभिषेक का समय चल रहा था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को और भीम को रोका, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप शांति रखो, मैं जीत रहा हूँ। और वो कहते हैं कि क्या हुआ तो गिर रहा हो, मैं लड़ता हूँ क्या आपसे, आप क्या क्या बिगाड़ लोगे, आप तो बाल बाल हो, आप कुछ शस्त्र नाम जानते हो क्या, हम क्षत्रिय हैं, ऐसे बहुत सारा उनका बुरा भरा बोलते हैं। जैसे ही सौ अपराध पूरे होते हैं तो भगवान चक्र निकालते हैं, आह्वान करते हैं सुदर्शन चक्र को और शिशुपाल का सर काट देते हैं। और ये सब देखते हैं, कर्ण देखते हैं, दुर्योधन देखते हैं, एकदम भयंकर अच्छी अचानक घटना होती है ना, कोई कोई किसी को उम्मीद नहीं कैसे होगा। लेकिन राजसूय के राजा विशेष में वध तो होता है बड़े आश्चर्यकारक युक्ति से, लेकिन उसके आगे बड़े आश्चर्यकारक बात होती है कि शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकलती है आत्मस्वरूप, और भगवान के शरीर में लीन हो जाए। बहुत आश्चर्य होता है, अभी इतना बड़ा द्वेषी भगवान का, इतना बड़ा पापी व्यक्ति और उसकी आत्मा जो है भगवान से लीन हो गई, बड़ा आश्चर्य हो गया। और ये कथा नारद मुनि जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, दर्शन चक्र की जय, भगवान के दिव्य तेजस्वी हजारों सूर्यों के समान प्रभावी चक्र के द्वारा वध होता है शिशुपाल। इस पर इनविंसिबल वेपन, इसका कभी पराजय नहीं होता है, ऐसे भगवान का अस्त्र हमारे मंदिर में विराजमान है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, तो नारद मुनि ने उस प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में ये पूरा सब बताया, और अभी ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई। तो आखिर में हम देखेंगे तो ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। भगवान की हृदय की जो करुणा है उसको समझना किसी को मुमकिन नहीं, कैसा सोचते हैं और कैसा क्या करके क्या प्लानिंग बनाते हैं और कैसे जीवों के उद्धार के लिए दिव्य योजना बनाते हैं, साथ साथ भक्तों को भी आनंद देते हैं और अपनी लीलाओं की दिव्यता से सभी भक्तों के हृदय को हर लेते हैं, उनके हृदय में प्रेम बढ़ाते हैं, जो लोग उन पर विश्वास नहीं रखते हैं उनको विश्वास दिलाते हैं, जो थोड़ा बहुत श्रद्धा प्राप्त कर चुके हैं उनकी भक्ति को बढ़ाते हैं, इतना दिव्य काम करते हैं कि एक भगवान की लीला करने से उनके इतने सारे उद्देश्यों को पूरे करते हैं। तो लीला भी आप जानते हैं, लेकिन बताने में आनंद है उसमें कि वो चार कुमार जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, और वो इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर को केवल 4 साल का बना कर रखा, ताकि उस शरीर के अंदर काम वासना जो है स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो उत्पन्न ना हो। मतलब जानते थे कि ये जो काम वासना है ये इतनी भयंकर है कि ये जीव को फंसा देती, भगवान भी किताब में बताते हैं सबसे बड़ा शत्रु जो है जीव का वो काम वासना है, महाशनो महापापा, मतलब ये भयंकर शत्रु है, ये सबको नष्ट कर देता है उसके आध्यात्मिक जीवन को, तो हमें उसमें गिरना ही नहीं, इसलिए वो शरीर का विकास होने के पहले ही हम वैसे ही रहेंगे, विकास होने देंगे नहीं। तो 4 साल की उम्र में घूम रहे हैं सब जगह, हजारों साल लाखों साल की योगी है वो, तपस्वी हैं, और 4 साल के बालक अगर कोई नग्न अवस्था में आपके सामने आएगा तो आपको कोई संकोच नहीं होगा उसके अंदर, तो बालक है क्या उसमें, वैसे नग्न अवस्था में घूम रहे हैं सब जगह विश्व में और जाते हैं वैकुंठ में भगवान की इच्छा से दर्शन करने के जाते हैं, वहाँ द्वारपाल जय विजय खड़े वहाँ पर एकदम ऑफिशियल ड्रेस में पूरा देखते, 4 नग्न बालक वहाँ पर आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि आपको भगवान विष्णु का दर्शन करना है, तो यहाँ पर भगवान विष्णु का दर्शन करने का आपकी योग्यता नहीं, आप जाओ अपने जगह, तो उनको अच्छा नहीं लगता है और वो भगवान के हृदय से प्रेरणा से उनको साथ देते हैं। या तो आपको पहले बोलते हैं आपको भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, तो तुम डर जाते रहे तो महान भगवान भक्त हैं, भगवान तपस्वी लोग होश में आते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति होते ना, मैं जय विजय के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर जो जिनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है उतने ज़्यादा भ्रम में चले जाते हैं अपने पद के अहंकार में, अपने जैसे कंट्रोल हाथ में आता है तो फिर वो तुरंत डंडा उठाने का देर करता है, यस ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, क्योंकि अधिकार होता है ना, वो एक आदमी का एक ऐश्वर्य है, उससे कभी कभी ऐश्वर्य को अगर भगवान की सेवा में नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ऐश्वर्य बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और सत्य को पहचानने में कठिनाई उत्पन्न करता है, डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई द ट्रुथ, वेयर इज द ट्रुथ। इसलिए अगर ऐश्वर्य आता है हमारे पास तो हमको हमेशा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ताकि वो हमारी बुद्धि को मति को भ्रष्ट नहीं करे, पहचानते नहीं उनको, बाकी पहचानते हैं अब तक साफ मिल चुका होगा, तो देखिए आपको भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, और देखिए हम लोग कितने आराम से यहाँ पर जी रहे हैं, और सोच रहे हैं कैसा और कम्फर्ट उत्पन्न करें, कैसे और कुछ थोड़ा सा साधन जोड़ दे तो हमारा परिवार हम सब आराम से रहें, ये लोग भौतिक जगत में जाने के विचार से डर रहे हैं, नहीं नहीं है एकदम भयंकर तो साथ दे रहा है, भौतिक जगत में जाना पड़ेगा मतलब पृथ्वी में जाना पड़ेगा और शरीर धारण करना पड़ेगा, जो धन मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ शरीर हो, जिस पर काल का प्रभाव हो, जो बूढ़ा हो सकता है, जो बीमार हो सकता है, जो जन्म और मृत्यु के दर्द को प्राप्त हो सकता है, ऐसे जगत में हमको जाना पड़ेगा, नहीं चाहिए, जाना तो पड़ेगा। सात बार आपको भक्त बन के रहा, सात बार कोई ऐसा उपाय बताओ, कुछ संदेश दे दो तो देखिए तीन बार आपको अक्षर बनना पड़ेगा, तो आप लोगों को अगर बताया जाए कि आपको चॉइस दिया गया है सात बार भक्त बन के जाओ और तीन बार राक्षस बन के जाओ, उसमें से कौन सा चुनेंगे आप? हाँ यस, सात बार भक्त बनने का चुनेंगे आप, क्या चुनेंगे? हाँ सात बार भक्त बनना चुनेंगे, तीन बार राक्षस बनना चुनेंगे आप, क्या चुनेंगे? तीन बार राक्षस बनना चुनेंगे, क्यों? जल्दी हो जाएगा, हाँ इसलिए जय बजाय ने यही सोचा कि भौतिक जगत में यहाँ पर भक्त बनकर रहना भी कष्टमय है, एक्चुअली ये भी समझना जरूरी है, भौतिक जगत में हर चीज कष्टमय है, हाँ ऐसा नहीं कि आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग भौतिक जगत में हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा मंदिर भी भौतिक जगत में, तो सारे काल का प्रभाव निर्धर भी होता है, लेकिन फिर भी दिव्यता का प्रकाश आगे होता है, जैसे हम लोग अपने अपने दिव्यता के संबंध में रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, हम लोग भौतिक जगत में, यहाँ का सारा कष्ट जो है, हाँ आप मंदिर में पेंट करेंगे तो बस उनका पेंट निकल जाएगा काल के प्रभाव से, मंदिर दिव्य है, वैकुंठ है भगवान, लेकिन काल के प्रभाव से हमारा हमें जो दिखता है वो सब जीर्ण होते हुए नजर आएगा, जैसे मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, क्योंकि जीर्ण होता है ना मंदिर कुछ समय के बाद, भगवान दिव्य रहते हैं, भगवान तो काल का प्रभाव नहीं, लेकिन जो आस पास में दिखाई पड़ता है वो प्रभाव में है समय के, तो ये सात बार भगवान के प्रेम में और भक्ति में रहने के बदले में तीन बार राक्षस बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कम से कम समय भौतिक दुनिया में रहना है, और ये बात हमको सबको सोचना बहुत जरूरी है, जिस जगह पर हम लोग सब और मतलब वैसे कंफर्टेबल है ना, अरे प्रोग्रेस भी हो चुका है, प्रमोशन भी मिला है, पगार भी बढ़ चुके हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, एक व्हीकल भी आ गया है और नया घर में अभी सामान भी आया है, टीवी भी आया है, फाइन लाइफ इज वेरी गुड, हाउ आर यू? वेरी नाइस, इट इज गोइंग ऑन नाइसली, पर ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ पर भगवान की विष्णु के लिए जी रहे और कष्ट भोग रहे, दुख भोग रहे, और जिन वस्तुओं से वो भोग और आनंद लेना चाहते हैं वो उनसे प्राप्त नहीं होता, खाली भ्रम रह जाके मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अभी हम गाड़ी आएंगे तो गाड़ी से आनंद मिलेगा, जब गाड़ी का रिपेयरिंग पंक्चर ये वो चलता है तो उसको मेंटेन करने में जो तकलीफ है वो ज्यादा है और जो सुख मिलता है वो बहुत कम है, ऐसे हर एक वस्तु का है दुनिया, और ये जो ऊपर वाले लोग हैं जो मुक्त हो चुके हैं ये सोच कर भी डरते हैं, फिर हम लोग वहां पर आदत हो गई हमको भी यहाँ रहने की, अभी आप बोलेंगे रोज जो ट्रेन में जाता है विरार से चर्चगेट तक तो वो इतना बोर नहीं होगा, लेकिन आपको अगर कहेंगे आप दो मिनट में चलते काम पे आते हैं आपको लेने आपको आपको विराट ट्रेन से जाना पड़ेगा तो आप डर जाएंगे वहाँ से, अरे इतनी गर्दी में कैसे जाते हैं आप, मैं बोल चाहते हैं तो क्या होता था कि कष्ट की भी हमको आदत बन जाती है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ी देर बीमार तो होना ही है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ऐसा लगता है हमको। लेकिन जब आदमी भक्ति में आता है, जब ये भगवान का नाम लेता है, तो इस सत्य से वो अवगत हो जाता है कि दिस इज पेनफुल, ये दर्द वाली चीज है, कष्ट होता है, मेरा स्वभाव नहीं है ये कष्ट सहन करना। क्या प्रकार क्या भ्रमवश उन्होंने सोचा था, मतलब जय विजय ने फिर तय कर लिया कि हम चले जाएंगे अक्षर बनेंगे, तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने वो पहले, उसके बाद में वो बने रावण और कुंभकर्ण, भगवान रामचंद्र के दिव्य बाणों से उनका वध हो गया, फिर वो बने शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल का वध मैंने बताया कैसे हुआ, दंतवक्र का वध भगवान ने अपने लीलाओं के अंतिम समय में किया, वो द्वारका से मथुरा आए, मथुरा से दंतवक्र को उन्होंने मारा, फिर दंतवक्र भी शिशुपाल का मित्र था, वो बहुत उनका द्वेष बढ़ गया था भगवान के प्रति, मेरे मित्र का वध किया। और दंतवक्र को जब भगवान ने मारा, उसके बाद भगवान ने उस बहाने ब्रज में प्रवेश किया, और उस समय सारे ब्रजवासी एकदम मरणासन्न अवस्था में, एकदम भगवान के हृदय में एकदम उनका सीमा जो है ना, एकदम लिमिट जो है हो चुका था, एकदम शरीर छोड़ने वाले थे, तो भगवान ने वहां प्रवेश किया और सारे ब्रजवासियों को विमान में लेकर वो लोग धाम चले गए, उन्होंने उनको वहां पर छोड़ा और फिर भगवान लौट के आए द्वारका में और अपना द्वारका लीला भगवान ने समाप्त किया। ये थोड़ा समय आपको बताया, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो उनका भी समय होता है, उस समय के लिए करते हैं, फिर और जगत में जाते हैं, उनका एक रावण रूप है अपने भक्तों को संग लेकर वो अच्छी लीला रचाते हैं, और लीला रचाकर रचाकर एक लोक से दूसरे लोक पर चलते रहते हैं। तो भगवान की लीला दो प्रकार से दिखते हैं, एक प्रकार से वो गौरव धाम में लीलाएं चलती रहती है, मतलब वो अनंत लीलाएं वहां पर प्रेम की लीलाएं चलती रहती है भगवान के धाम में, और भौतिक जगत में वो अनंत चलती रहती है, कैसे एक लोक से दूसरे लोक में, तो यहाँ पर भी वो टेम्पररी लगती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो चलती रहती है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं भगवान का उसका तो लीला चल रहा है। क्यों करते हैं भगवान का प्रयास, इतना आनंद है उनके धाम में, इतने प्रेमी भक्त हैं जिनको कोई भौतिक वासना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कुछ मन में उनकी किंतु नहीं है परंतु नहीं है, ऐसे प्रेमी भक्तों के साथ में उनका निवास है वो लोग वृंदावन, और कितने प्रेम से वो नित्य भाव से उनको सेवा करते हैं। फिर भी भगवान जो है ना, ऐसे पिता का भाव होता है, तो 10 बच्चे होंगे उसको सब उससे प्रेम करते हैं, सब उनकी सेवा करते हैं, सब उनकी देखभाल करते हैं, सब उनके लिए जो चाहे वो देखभाल करते रहते हैं, एक बालक उनका जो है वो ऐसा भटका हुआ, तो पिता का हृदय जो ना हमेशा उस बालक के आस पास भटकते रहते हैं, तो कैसे उसको मैं ठीक करूँ, कैसे उसको अच्छा करूँ, कैसे उसका कल्याण देखूँ, कैसे उसको बचाऊँ, क्या करूँ, मैं किसी भाई को भेजूँ, बहन को भेजूँ, मित्र को भेजूँ, ताकि उसकी मति सही जगह पर आए, और फिर वो उसी आनंद में आए जो बाकी मेरे बालक जो आनंद को अनुभव कर रहे हैं मेरे साथ रहकर, वो भी उसको प्राप्त हो, उनका मन हमेशा उसी भाव में रखे। तो नौ बालक सोचेंगे, अरे पापा आप, मैं तो हमारे साथ में, आप वो हमारा बारे सोचते नहीं, आप उसके बारे में सोचते हो, वो आपको विद्रोह कर चुका है, आपको छोड़ चुका है, आपको छोड़ के जी रहा है, आपके विस्मृति में जी रहा है, आपका द्वेष भी करता है, फिर आप उसके बारे में सोचते रहते, क्योंकि पिता का वात्सल्य जो है ना समझना हमारे लिए मुश्किल है, पिता सोचते कैसे है, इसे कई कहानियां है। एनीवेज, तो ये करुणा है, क्योंकि जीव का कल्याण जो है ये भगवान के ज्यादा कोई सोच नहीं सकता, भगवान की जो करुणा है वो जीव के लिए अमर्याद है, हमेशा वो जीव का हित चाहे। तो इंदिरा ने क्यों किया, इसी कारण किया कि उस माध्यम से वराह देव का अवतार हो, उस माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार हो, इस माध्यम से कृष्ण बनकर आए और शिशुपाल दत्तवर का वध हो गया, और वहां वो श्री रामचंद्र बनकर आए और बाण से उन्होंने दो राक्षसों का वध कर दिया, इतना लीला रचाया उन्होंने, उसका कारण क्या है, उसके कई कारण है। एक कारण तो ऐसा होता है कि गौरव धाम में एक बात होती है कि वो गौरव धाम में कोई युद्ध युद्ध नहीं होता है, गौरव धाम में कोई युद्ध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, लेकिन एक रस है जिसका नाम है वीर रस, वो जो वीर रस होता है वो 13 रसों में से एक रस है, 5 रस प्रधान है, 2 प्रेम के हैं, एक उसमें वीर रस भी है, शिविर मतलब युद्ध करने का जो होता है ना अंदर बहुत इच्छा होती है भगवान की, उसमें भी उनको आनंद लेने की इच्छा होती है, तो वो ऐसे लीला रचाते हैं। और गौरव धाम में तो प्रेम से लड़ाई करते हैं, कभी कुश्ती खेलते हैं, जैसे पिता अपने बालक से कुश्ती खेलता है तो थोड़ी वो मार देता है उसको, कभी कभी पिता हार भी जाते हैं, खेल खेल में खेलते हैं ना, तो खेल खेल व्यवस्था पूरा अनुभव नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे लीला करके भक्तों को नीचे भेज रहे और फिर सही द्वेष में आते हैं, एकदम इतना द्वेष करते हैं, उतना भयंकर युद्ध करते हैं भगवान, कभी आसमान में भरा देव का युद्ध करते हैं, कभी अद्भुत रूप में खंभे से निकल कर भयंकर हिरण्यकश्यपु को मार देते हैं। हाँ, फिर रावण वगैरह का क्या वर्णन करें, क्या उनका साहस था, क्या उनकी सिद्धियाँ थी, और क्या उनका बल था, क्या शस्त्रास्त्र दिव्यास्त्र उनके पास थे, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, सभी देवता भी रोंगटे खड़े होकर ऐसे खड़े देख रहे थे, एकदम स्तंभित होकर क्या हुआ आगे, इतना बड़ा रोमांच खड़ा करते वो पूरा एकदम कम्प्लीट, ताकि भक्तों को आनंद ले लेते हैं। तो क्या है, प्रभुपाद जी कई बार कह चुके हैं कि भगवान को मारने के लिए तो हृदय के अंदर चले जाएंगे मिनी चक्र लेकर, हाँ, और हृदय की धमनी को काट देंगे अंदर से, तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, कोई कदम नहीं कुछ नहीं, देखिए आदमी मर जाएगा। रावण कुंभकर्ण को मारने में क्या डिफिकल्टी थी, हिरण्यकश्यपु को मारने में क्या डिफिकल्टी थी, फिर जितनी लीला तो करते हो, एक तो भक्तों को जाने के लिए करते हैं और उससे भी ज्यादा बद्ध जीवों को उद्धार देने के लिए, और ऐसी लीला अद्भुत लीला वो करते हैं। हाँ, कल हमारे मंदिरों में गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाए, कितनी अद्भुत लीला है, भगवान इतने सारे अवतारों में जो है भगवान बन के आते हैं और भक्तों को उद्धार करते हैं, भक्तों को प्रेरणा देते हैं, राक्षसों को मारते हैं, लेकिन भगवान बन के आते हैं। गौरांग महाप्रभु का अवतार कैसा है, ये ऐसी लीला है, इनको अवतार लीला कहते हैं, बाकी सब लीला जो है मर्यादा लीला है, उनकी पूर्ण पुरुषोत्तम लीला है, अलग अलग भाव में अपना अलग अलग लीला प्रकट करते हैं, अपना ऐश्वर्य जो है उनका लीला वो प्रकट करते हैं, लेकिन ये लीला बहुत अद्भुत है, बहुत अनाकलनीय है, छंद अवतार कहते हैं उसको, समझना भी मुश्किल है कैसे कैसे हो सकता है, भगवान स्वयं षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होते हुए भी वो एक भक्त बनना चाहते हैं, और भक्त बनकर जो भी उनको खा कहते हैं कि आप विष्णु हो भगवान हो, तो वो कान पे हाथ रखते हैं, नहीं 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 मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं तो उनका भक्त हूँ, मैं तो दास 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 अमुदास हूँ, वो भी भरत पदक मल लो दास 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 अमुदास हूँ, मुझे भगवान मत बोलो, और अपने आप को छुपाकर अपना ऐश्वर्य छुपाकर एक भक्त बनकर कैसे प्रेम करते हैं भगवान पर, उसका उदाहरण था भक्त, उनके सिवा कौन बता सकता है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, उनके अलावा कौन ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है कि हाउ टू वर्शिप कृष्णा, स्वयं भक्त उसका अंदर का रहस्य यह है कि वो राधा रानी के भाव को जानना चाहते हैं, राधा रानी कैसे सोचती है उनके बारे में, उनका अनुभव करना चाहते हैं, क्या देखकर राधा रानी उन पर उनकी ओर आकर्षित हो जाती है, मुझ में से क्या क्या बात है वो देखकर वो आकर्षित होती है, और आकर्षण में क्या आनंद है और क्या रहस्य है वो जानना चाहते हैं, वो अंतर्गत कारण है उनके, वो अपने अंदर अंदर ही वो जानना चाहते हैं कि मेरी जो प्रियतमा है श्रीमती राधा रानी, उनका मेरे प्रति जो महाभाव है उससे उन्हें मुझसे अधिक आनंद प्राप्त होता है, मेरे पूजन में मेरे भजन में मेरे भक्ति में राधा रानी को मुझसे अधिक आनंद प्राप्त होता है, मैं उनका विषय हूँ, भगवान जो है वो विषय विषय विग्रह है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, राधा रानी जो है आश्रय विग्रह है, वो उनकी जो पूजा है उनका जो मेथड है भगवान का भजन करने का वो आराधना कहते हैं, आराधना ऐसा शब्द है जो केवल राधा कर सकती है, आराधना ये उपासना और बाकी प्रक्रियाओं से अलग है, जो राधा भगवान के प्रति व्यक्त करती है उसे आराधना कहते हैं, हम कभी सोच नहीं सकते कि हम लोग आराधना कर पाएंगे, हम लोग साधना कर सकते हैं, आराधना नहीं कर सकते, आराधना ये महाभाव की स्थिति है, उसको अपनाते हुए उसको करते हुए राधा रानी को जिसके प्रति वो आराधना कर रही है उससे भी अधिक आनंद का अनुभव होता है, और वो कृष्ण देखते हैं कि ये मुझसे अधिक आनंद का अनुभव करती है, क्या आनंद है मेरे भक्ति में, ऐसा क्या आनंद है, सब कुछ जानते हुए सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान के मन में ये प्रश्न है कि ये क्या चीज है, भगवान जैसे मैं आपको थोड़ी सुंदर लीला बता रहा हूँ कैसे भगवान दिव्य है, वो जो पीली पोखर नाम की जगह है बताए आपने सुना होगा ना, पीली पोखर में राधा रानी अपने हाथ धोती है, उनको यशोदा मैया हल्दी लगाती है, और मतलब बहू बनाने के भाव से एकदम भाव विभोर होती है वो, और एकदम लगा देते हैं बिना किसी को पूछे हुए, बिना माता पिता को पूछे हुए उसके हाथ में हल्दी लगा देते, इसका उपवर जिसका उपवर कन्या है उसके घर में विवाह योग्य बालक है, वो माता किसी कन्या को हल्दी लगाए तो मतलब क्या होता है कि मुझे आप बहू बनते चाहिए, खुश हो जाते हैं, भाव भी बढ़ होगा, बरसाने पहुंचते हैं राधा रानी, सोचते अरे माता पिता क्या कहेंगे, तो वो हाथ धोते हैं, कुंड में हाथ धो लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सारा कुंड जो है वो पीला हो जाता है, बड़ी दिन लंबी जगह है वो। लेकिन यहाँ पर कनिष्ठ वंश का ऐसा है, उसके कुछ दिन बाद वहां पर कृष्ण भगवान आते हैं, ऐसे घूमते घामते राधा रानी के बिना वो रह नहीं सकते हैं, कभी वहां बैठ नहीं सकते, उनके उनके बरसाने में आ जाते हैं, किसी रूप में कोई श्यामा सखी बन के आते हैं, कभी गुड़िया बेचने आते हैं, कभी कुछ बन के आते हैं, कभी झाड़ू वाले बन के आते हैं, कभी फूल बेचने आते हैं, अलग अलग रूप में छद्म लीला कहते हैं, छद्म लीला मतलब भेष बदल के आते। तो जब वो आते हैं तो देखते हैं अरे कुंडल इतना पीला कैसे हो गया, और वो पीला मतलब हम पीला कहते हैं, वो स्वर्णमय कांति है, उस राधा रानी कांति है ना स्वर्णमय कांति, येलो इज गोल्डन येलो, प्रकाश है दिव्य, हजारों सूर्यों का प्रकाश है उसका, तो वैसा दिव्य प्रकाश और स्वर्ण का रंग जो है इस कुंड से प्रकट हो रहा है। कृष्ण भगवान आश्चर्य होते ये कैसा रंग है, ये कैसा रंग है, ये कैसा रंग है, ऐसे करते करते वो जल में उतर जाते हैं, पहले पैर से उतरते हैं, फिर घुटने तक उतरते हैं, फिर जंगा तक उतरते हैं, फिर पट्टी तक उतरते हैं, फिर वक्षस्थल तक उतरते हैं, फिर गर्दन तक उतरते हैं, फिर और उतर जाते हैं, सर भी पानी गिर जाता है, वैसे हाथ ऊपर है उनके, मोरपंख लगाया हुआ है, और ऐसे ये कैसा पीला रंग है, व्हाट इज दिस येलो सब्सटेंस, ऐसे करते करते उतरते उतरते उतर जा रहे हैं, और बाद में जल के ऊपर केवल मोरपंख और दो हाथ देने पड़ते हैं, और पूरे जलाशय में दो हाथ और मोरपंख घूम रहे हैं, और सभी रास वातावरण में प्रश्न गूंज रहा है, ये पीली वस्तु क्या है, ये स्वर्ण वस्तु क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस, ऐसे करते करते सब आसमान में आवाज गूंज रही है, एक ही प्रश्न गूंज रहा है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस, ये स्वर्णमय वस्तु क्या है। तो बाहर निकलते हैं तो स्वयं स्वर्णमय बन जाते हैं, गौरव वर्ण धारण कर लेते हैं, सब परिवार से आश्चर्य होते हैं, ये कौन न्याय व्यक्ति, कृष्ण का नंद का लाला जो है वो तो सामने रखता है, और पंख भी है लेकिन पूरा गौरव वर्ण है, राधा वर्ण राधा रानी के वर्ण का बन गया है। तो ये फिर एक बार प्रश्न पूछते हैं, और हमारे रूपा जी के शिष्य हैं प्रसाना महाराज बताते हैं कि उस समय सबसे पहली बार श्री कृष्ण भगवान ने ये व्यक्त किया कि वो कलयुग में कैसे भाव में आने वाले, दूसरी बार भी उन्होंने लीला दिखाया उसके बाद में ही, ये तो भगवान जब बाल्य अवस्था में थे तभी का लीला है, क्योंकि छोटे से बालक थे वो, 10 साल 3 महीने के बाद में फिर वो मथुरा चले गए, उसके पहले वो नंदगांव अवस्थान की लीला थी, छोटे से बालक के रूप में उन्होंने अपना रंग प्रकट किया और व्यक्त किया कि ऐसे भाव में मैं आऊंगा। फिर जब कृष्ण भगवान का गोविंद कुंड पे अभिषेक हुआ और इंद्र ने उनको गोविंद यानी कि वृंदावन के राजा, विश्व के राजा के रूप में उन्होंने स्थापन किया, उनको घोषित कर दिया कि आपका नाम गोविंद है, उस समय सभी गोपियों ने मिलकर राधा रानी का अभिषेक किया पिंडली तालाब में और उनको वृंदावनेश्वरी के रूप में वहां पर स्थापन किया। उसी इंद्रतला के पेड़ के नीचे 7 साल के बाद जब प्रथम रासलीला भगवान ने किया, उसको कहते शरद रासलीला, शरद ऋतु शरद पूर्णिमा के दिन, और उस रासलीला के अंदर जब गोपियों को थोड़ा गर्व हुआ तो छोड़कर चले गए गोपियों को, तो भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, तो वो जब उनको छोड़ के चले गए तो भगवान भी व्याकुल थे उनके विरह में और गोपियां भी व्याकुल हो गई, समझ गए कि वो केवल मेरे साथ नहीं थे, वो सबके साथ में थे, नृत्य कर रहे थे। फिर विरह में पश्चाताप करते हैं, ढूंढते ढूंढते राधा रानी के नेतृत्व में सब लोग आते हैं और देखते हैं तो इंद्र के पेड़ के नीचे कोई दिव्य व्यक्ति बैठा है, क्यों दिव्य व्यक्ति बैठा है, क्यों नहीं पहचानते उनको, क्योंकि भगवान जब वहां पहुंचे गोपियों के विरह में राधा रानी के विरह में, तो वो राधा राधा रानी के नाम का मंत्र उन्होंने जप किया वहां पर राधा रानी के विरह में, और जब राधा रानी के भाव में मग्न हो गए तो राधामय बन गए, शामदार रंग उनका ढल गया और गौरव वर्ण उनको छा गया, गौर कांति स्वर्ण कांति, और वो मग्न से राधा रानी के भाव में राधा रानी को याद कर रहे थे, उसे उनका रंग गौरव वर्ण हो गया था, मोर पंख सब कुछ है, और उस अवस्था में उनको राधा रानी देख रही है, ये कौन व्यक्ति इसको हमने कभी देखा नहीं ब्रज में, लगता कृष्ण जैसा है लेकिन वर्ण तो गौरव वर्ण है, तो फिर उनको छूते हैं, जैसे वो छूते हैं तो फिर वो पुनः अपने सावधे रंग में आते हैं, राधा रानी को पूछते हैं चलिए ये क्या रुख था आपका, तो मैं आपको छोड़ के चला आया तो मैं आपके विरह में व्याकुल हो गया और आपका ही ध्यान कर रहा था, आपके प्रेम का भाव का ध्यान कर रहा था, तो मैं आप में बन गया, आप जैसा ही हो गया, और इस अवस्था में जब मैं कृष्ण हूँ और आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपके विचार कर रहा हूँ, आपके भाव में मग्न हूँ, इसका मैंने इतना दिव्य आनंद का अनुभव किया है, पहले कभी भी नहीं किया था। इसलिए मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कलयुग में इसी आपके भाव को लेकर आऊंगा और लीला करूंगा। ये उनके अंतर्गत कारण है क्यों आ रहे। राधा रानी कहते कह रहे हमारे भाव को आप अगर स्वीकार करेंगे तो आप पत्थर में गिरोगे, कंकड़ में गिरोगे, जल में गिरोगे, अपने आप को जख्मी करोगे और मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरी कांति जो है से आपको ढक दूंगी। तो एक तो भाव का रंग है राधा रानी, और ऊपर से राधा रानी का जो शरीर की कांति है वो राधा रानी ने उन पर ढक ली। ये इनका चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये रहस्य है, बहुत ही अति दिव्य अवतार है। बाकी सारे अवतारों में से अनाकलनीय, समझने में बहुत मुश्किल, छुपा हुआ अच्छन्न अवतार और अति दिव्य अवतार है। मूल धारण क्या है, भैरव का कारण लगभग भारत का कारण क्या है वो जानते हैं। कलयुग में सभी जीव जो है वो पीड़ित रहेंगे, उनकी आयु बहुत कम रहेगी, उनकी स्मृति बहुत कम रहेगी, सद्गुण बहुत कम रहेंगे, झगड़ालू रहेंगे, हमेशा झगड़ते रहेंगे और दम्भ रहेगा उनके लिए, जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। हम सबका कलयुग में प्रयास यही है, मैं जो नहीं हूँ वो दिखाऊँ, मैं अच्छा लगता नहीं, मैंने तो बहुत काम पास कर, लेकिन मैं दिखाऊंगा मैं कितना अच्छा हूँ। प्रामाणिक नहीं हूँ, मैं चीटिंग हूँ बिजनेस करने में, लेकिन दिखाऊंगा मैं कितना प्रामाणिक। नहीं केवल आपके लिए, आपके लिए रेट है, इसमें लेते नहीं हम, केवल आपके लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस में लेते। ये सब जगह चलता है कलयुग में। पारेण अल्पायुषा कलावश में युगे जनाम, हाँ मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विपद दुखा। ये कलयुग का बहुत बड़ा वर्णन है हमारे लिए, सब हमारे लिए हमारा डेफिनेशन है, हमारी व्याख्या, हमारे जीवन की व्याख्या भागवत में की गई है। इतना पतित हमारा जीवन है, हमारे अंदर कोई गुणी नहीं है। देवताओं को देखकर देवताओं को हंसते हैं, जब हमने कोई सत्य वचनी होने पर जो गर्व करते हैं देवता लोग हंसते हैं, ये लोग इनका कितना तुच्छ सत्यवचनी जीवन है, लेकिन कितना गर्व करते हैं उसको। तो ऐसे पति जीवन को भगवान जब देखते हैं कलयुग के, तो जानते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, ना ध्यान कर पाएंगे, विश्वामित्र मुनि जैसा, वशिष्ठ मुनि जैसा 60,000 साल तक ध्यान करेंगे जंगल में जाकर तन्यस्त होकर, ना यज्ञ कर पाएंगे क्योंकि कोई साधन ही नहीं होगा यहाँ पर रहते करने के लिए। हाँ गाय का घी हम लोग कितना प्रयास करते हैं, मतलब इतना रिसर्च करते हैं, लेकिन गाय का बोनाफाइड साइंटिफिक घी नहीं मिलता है किधर, बहुत प्रयास करना पड़ता है उसके लिए, और हजारों टनों का घी लगता है यज्ञ करने में, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, द्वादशी यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ जो है कई महीने चलते हैं, कई कुंड होते हैं उसके, एक साथ हजारों कुंड लगते हैं, हजारों मुनि एक साथ में बैठते हैं, मंत्र बोलकर ऐसे जल्दी को उत्पन्न करते हैं। हमारे यहाँ पर एक ही कुंड होता है और एक पुजारी होता है, वो माचिस लेकर उसको अग्नि को जलाता है। तो क्या करेंगे यज्ञ, कुछ नहीं कर सकते। मंदिरों के जो विग्रहों की पूजा हम लोग आज करते हैं, वो द्वापर युग के सामने 0.001% भी नहीं है। द्वापर युग में जो अष्ट विग्रह पूजा होती थी ना, उसका कुछ थोड़ा सा अंश हम लोग करते हैं। और ऐसे भी मैंने सुना है गुरुजनों से कि राधा कृष्ण का जो डीडी वर्षिप है वो हम लोग घर ही ले सकते हैं। हम राधा कृष्ण के विग्रहों को लक्ष्मी नारायण के भाव में डीडी वर्षिप करते हैं। अच्छा विग्रह जो हमारी पद्धति है वो ऐश्वर्य पद्धति है, इन ऑल एंड रेफरेंस। राधा कृष्ण की जो अच्छा विग्रह पद्धति है वो तो भाव की होती है, वो तो हाथ से उसको खिलाते हैं और राधा कृष्ण ग्रहण भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं उनसे विग्रह के रूप में कर। तो जो कलयुग सॉरी जो पांडव जब थे द्वापर युग में, उस समय जो मंदिरों की पूजा होती थी भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको हम तो सोच भी सकते हैं। तो ना मंदिर की पूजा आप कर सकते हैं ठीक से जैसे करनी चाहिए, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। विरक्त होना नामुमकिन चीज है, सत्य बोलते रहना एकदम इम्पॉसिबल है। सदैव अच्छे बनकर रहना, ज्ञान प्राप्त करना, जो पढ़ा उसको याद रखना, आज फॉलो कर रहे हैं बड़े भाव से तो कल फॉलो करना कल भी उसी बात को, बहुत डिफिकल्ट है। सातत्य जो होता है ना कंटिन्यूटी, आज जो कर रहे हैं उसको कल करते रहना, साधना आज किया है भाव से वो कल भी करना मुश्किल है, बहुत भाव को बनाए रखना मुश्किल है बहुत। इतना कलयुग का काल का प्रभाव है हमारे ऊपर कि हम लोग सब लोगों की मति जो है ना वो भ्रष्ट ही रहते हैं हमेशा, अधिकतर कभी कभी कृष्ण पाठी बन जाते हैं। ऐसी मति अवस्था को देखते हुए भगवान जानते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं जाकर ऐसी कृपा करूंगा, क्योंकि भगवान की एक और एक विशेषता है कि जैसा युग आगे बढ़ता है वैसा जैसे सत्यु से वो द्वेता हो गया, द्वेता से वो क्या बोलते हैं द्वापर हो गया, और द्वापर से फिर वो कली हो गया। तो जैसे युग आगे बढ़ता है तो वो युग जो है वो घटौती होती है उसके अंदर, मतलब वो डिग्रेडेशन करके पतन होता है उसका। सत्ययुग से द्वेता खराब हो गए, द्वेता से द्वापर खराब हो गए। सत्ययुग में 100% सद्गुण थे तो द्वापर युग में 75% से शुरुआत होती है, मतलब 25% ह्रास हो जाता है। जब द्वापरता युग चालू होता है तो 75, 74, 73, 72 ऐसे करते करते जब द्वापर शुरू होता है तो वो 50% पे आता है, 50% सद्गुण बचते हैं, 50% सद्गुण खत्म हो जाते हैं। जब द्वापर शुरू होकर द्वापर का अंत होता है तो 50 से वो 25% हो जाता है, और 25% से अभी जीरो की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है सद्गुणों का जो डिग्रेडेशन है, पतन है। लेकिन भगवान की विशेषता है, भगवान क्या करते हैं जैसे युग नीचे उतरता है दूसरा वो आता है, तो भगवान अपना जो मेथड है उनका उनको प्राप्त करने का वो थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ध्यान से आसान यज्ञ है, ध्यान करना बहुत मुश्किल है, और यज्ञ से आसान है मंदिरों की पूजा, और मंदिरों से आसान भगवान सोचते हैं क्या करूं मैं, अभी कुछ तरीका ही नहीं बचा मेरे पास। भगवान सोचते हैं कि मैं अपने आप को मेरे नामों में अर्पण करूंगा, मेरी जितने भी ऐश्वर्य है, जितना बड़ा व्यक्तित्व है, जितने बड़े गुण है, मैं स्वयं पूरी शक्ति के साथ में मैं अपने नाम में अर्पण करूंगा, और वो नाम लेकर मैं स्वयं कलयुग में जाऊं। देखो आप कितनी करुणा है भगवान के अंदर, स्वयं ऐसे नहीं कि किसी अवतार को भेजूंगा, मैं किसी पार्षद को भेजूंगा, किसी विस्तार को भेजूंगा, किसी अंश को भेजूंगा, स्व अंश को नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो मैं स्वयं करूंगा, और वो भक्त मत कराते हैं, और गौलों के साथ प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन मेरे धाम का जो सार है एसेंस ना, इसको अगर थम निकाल के छोड़ दूंगा तो क्या बोलेगा, प्रेम धन गौलों को मतलब प्रेम है, केवल इट इज फुल लाइफ ऑफ लव, केवल प्रेम का प्रकट प्रकटते हैं गौलों में, केवल प्रेम है, बाकी सब कुछ बाहर जो भी लीला होती है वो केवल प्रेम व्यक्त करने के लिए। वो जो सार रूपी दिव्य अनंत प्रेम है वो मैं इसमें भर दूंगा मेरे नाम के, और वो महामंत्र बना के मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व में बांटूंगा। इतनी करुणा है भगवान, सोचो। और कैसे इसमें क्या बताया उन्हें, कोई बात नहीं, ध्यान करने के लिए आपको विरक्त होना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, इसमें वो भी नियम नहीं है। मंदिरों के वर्षिप के लिए बहुत सारे साधन लगेंगे, इसमें इसकी भी जरूरत है। यज्ञ के लिए घी लगेगा, मंत्र आदि उत्पन्न करने वाले ब्राह्मण लगेंगे, साधन लगेगा, बहुत सारा चीज लगेगा, इसमें कुछ नहीं लगता। क्या लगेगा, उसके मूर्त लगेगा, यज्ञ के लिए समय देखना पड़ता है, मंत्र को उच्चारण यहाँ सेवा हो गया तो गड़बड़ हो जाता है, कुछ नहीं लगेगा इसमें। समय का बंधन नहीं रहेगा, काल का बंधन नहीं रहेगा, और पुरुष स्त्री का बंधन नहीं रहेगा, धन का बंधन नहीं रहेगा, ज्ञान का बंधन नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कोई ज्ञानी होगा तो ही कर सकता है, अगर बीमार है तो भी कर सकता है, आरोग्य संपन्न है तो भी कर सकता है, कोई धनवान है तो भी कर सकता है, गरीब है तो भी कर सकता है, कोई एकदम कफल्लक है बिल्कुल उसका कोई खुटी कौड़ी भी नहीं है वो भी कर सकता है, कोई बालक अवस्था में कर सकता है, कोई बूढ़ी अवस्था में कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा है बहुत विद्वान है वो भी कर सकता है, और एकदम ठल्लू है बिल्कुल अंगूठा छाप वो भी कर सकता है। ऐसे नियम बनाया हमने, मतलब कोई जीव को बहाना बनाने का मौका ही नहीं तैयार भी कैसे कर सकते हो, हम तो अनपढ़ है कुछ लोग बोल नहीं सकते हैं, कोई कुछ मंत्र नहीं आता है, कैसे करेंगे। अरे मंदिरों में मुझे हम ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिया कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत बहाने बना सकते हैं। अरे पढ़ सकते नहीं हम लोग, तो हम स्कूल में गए नहीं, हमको अक्षर पढ़ने को नहीं आते। इतने सारे बहाने बोलने के बाद भी आप ये काम कर सकते हैं, वो काम उन्होंने डिजाइन किया हरिनाम संकीर्तन, सबसे पतित जीव भी कर सकता है, सबसे उन्नत जीव भी कर सकता है। और क्या क्या उन्होंने बाकी सारे जो पद्धतियां हैं, ध्यान है, यज्ञ है, उसके एक लाभ की एक लिमिट है उसके अंदर, वो लाभ का एक सीमा है कि आप अपने प्रारब्ध से मुक्त हो सकते हो, आप अपने संचित से मुक्त हो सकते हो। संचित का मतलब क्या है, जमा किए पाप कर्म अभी तक प्रकट नहीं हुए, तभी आगे जाकर उसका प्रकट हो जाए, वो नष्ट कर सकते हो। और प्रारब्ध का मतलब क्या है, जो अभी आप अनुभव कर रहे हैं पापों के रिएक्शन फल, उसको नष्ट कर सकते हो। ऐसा लिमिट है उसका, आप दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा में जाएंगे, नदी में स्नान करेंगे तो इतना इतना पाप पुण्य आप नष्ट कर सकते हो, लेकिन जो बीज है बीज उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। कोई दान पुण्य तीर्थ यात्रा तपस्या यज्ञ ध्यान ये सब बीज को नष्ट नहीं कर, बीज का मतलब क्या है, पाप करने की प्रवृत्ति जो है उसको नष्ट नहीं कर सकते, वो पेड़ की जड़ की तरह हो गए, आप पूरा पेड़ करके साफ कर दे जमीन के ऊपर, फिर कुछ दिन बाद में पत्ते आ जाते, क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर उसके रूट्स रहते हैं, मूल रहता है उसका, उसको बीज के समान आप समझ सकते हैं एक तुलना के लिए। तो जो बीज जो है वो हमारी भगवान के साथ विद्रोह जो हमने किया है वो है, वो जो भगवान को भूल कर, भगवान को ना मानकर, अश्रद्धा होकर, उनसे उन्होंने छोड़कर जो आए हैं, उसके कारण हमारे अंदर वो भौतिक जीवन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड, ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ गॉड, कि भगवान हम नहीं चाहते, ये जो प्रवृत्ति है ये सब पापों का कारण है, और उसको ही बीज कहते हैं। और हम सबको आज भी गौर पूर्णिमा का उत्सव है, सबको पता होना चाहिए कि केवल भगवान का नाम के अंदर ही वो शक्ति है जो इस बीज को नष्ट कर सकता है। और कोई भी साधन जो हम लोग कर रहे हैं, लोग उपवास कर रहे हैं एकादशी का, हम लोग पूजा करते हैं, हाँ, ये सब लोग सब जो है वो बीज तक नहीं पहुंच सकते, केवल हरिनाम संकीर्तन जो है वो इस बीज को नष्ट कर सकता है। और उस बीज के जगह पर भगवत प्रेम का बीज डालकर भगवत प्रेम की जो वैल्यू है वो उसको उत्पन्न कर सकता है। इतना दिव्य कार्य चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, और फिर वो लेकर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, हाँ, और अवतार के अंदर कुछ ऐश्वर्य का भोग नहीं करते हैं, उनका जीवन त्याग से भरा हुआ। इतनी सुंदर पत्नी थी उनकी, विष्णु प्रिय नाम थी, माता थी सूची माता, हाँ, ऐसी कोई माता नहीं हुई इतना प्रेम करती, इतनी सद्गुण संपन्न देवता समान उनकी पत्नी थी, इतना सुंदर उनका आदर्श गृहस्थ जीवन था। क्या कहते हैं कि मैं उन जीवन तक पहुंचना चाहता हूं जो अभी तक तड़प रहे हैं भौतिक दुनिया के प्रभाव से, मैं मेरे घर में रह सकता हूं, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी माता और इतने सुंदर भक्तों का संग मुझे आ रहा है, वो मेरे लिए हृदय को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतने सारे करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, मैं उन जीवन तक पहुंचना चाहता हूं, और उन तक पहुंचने के लिए एक सुंदर मार्ग है वो संन्यास लेना। इसलिए मैं जवान हूं, जानता हूं यौवन अवस्था में हूं, और सब कुछ समझते हुए मैं घर पर नहीं रह सकता हूं, मैं उन जीवन तक पहुंचना चाहता हूं और उनको हरि नाम देकर कृष्ण प्रेम देना चाहता हूं। तो मैं क्या कह रहा था कि बाकी सारी विधियों से आप कुछ लिमिट तक आपको प्राप्त होता है लाभ, लेकिन हरि नाम संकीर्तन से न केवल आप प्रारब्ध से मुक्त हो जाएंगे, न केवल संचित से मुक्त हो जाएंगे, न केवल बीज से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो जीवन की सबसे अंतिम लक्ष्य प्राप्ति है कृष्ण प्रेम, प्रेम अपमान तो महान पंचम पुरुषार्थ, वो छठ से प्राप्त होता है। देखिए ना जगह बजाय कथा, इतने भयंकर पापी थे वो कि ऐसे कहते हैं, चैतन्य भागवत में लिखा है कि विश्व के सारे लोग मिलकर अपने जीवन भर में अपने बेस्ट कैपेसिटी में जितना पाप नहीं कर सकते हैं वो मिलकर एक दिन में करते हैं। हम सब लोग मिलकर अपने मतलब हमको भी पाप ही करना है ऐसे सोच कर बेस्ट कैपेसिटी में जीवन भर में मिलकर जितना पाप नहीं करते वो एक दिन में करते। ऐसे भयंकर पापी जब उन्होंने तो मुक्त किया था, देखिए अभी पाप से मुक्त हो गए, अभी जब किया थोड़ा भक्ति साधना किया, फिर राधा का भक्ति किया, फिर भाव भक्ति किया, फिर प्रेम भक्ति प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं, इंस्टेंटली उनको प्रेम दिया उन्होंने। इसका मतलब बीज का नष्ट होना ये जीवन की बड़ी प्राप्ति नहीं है, बीज जो है भगवान के विद्रोह का वो नष्ट हो गया, तभी हम लोग मुक्त हो गए, हम लोग जीरो अवस्था में आ गए, हम लोग जीरो कंडीशन, उसके आगे भी हमको साधना राधा मुगा भगवान के प्रेम में प्रगति करना है, आगे आगे बढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, मति को शुद्ध करना है, उसमें इस बीज को प्रेम भक्ति के बढ़ाना है, सिंचन करना है, उसको साधना करने से, और धीरे 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 भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा कैसी है, इंस्टेंटली वो कृष्ण प्रेम देते, पात्रे अपात्रे ना देखिला ना देखिला स्थान है स्थान, व्यक्ति पात्र है कि नहीं है, स्थान योग्य है कि नहीं है वो देखते नहीं है, क्या देखते हैं, अगर उसमें मेरी भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, मुझे चाहते हैं, he wants me, that's all। इतने लोग क्या कहते हैं, अगर गौरांग महाप्रभु के विचार में आपके आंखों में एक कोने से आंसू निकलते हुए देखूंगा तो कृष्ण प्रेम मैं आपको तुरंत देखूंगा, मतलब 60,000 साल का ध्यान और भयंकर बड़े बड़े यज्ञ कोई करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, इसके अंदर इंस्टेंटली सब पाप नष्ट होकर तुरंत उसी समय पर प्रेम भक्ति का उदय होता है, और प्रेम भक्ति के परिसीमा का अनुभव करते हैं, वो जगह मजा ऐसे प्रेम में आ गया, बड़े अंतर से भजन करेंगे, ऐसे नहीं, वो बेहोश हो गए प्रेम से, अति प्रेम का अनुभव किया इंस्टेंटली उसी घटना में, एक घटना में कुछ क्षण पहले वो उनको उनको मार चुके थे और भयंकर पापी मोड़ में थे, कुछ क्षणों के बाद में एकदम शुद्ध भक्त बन गए। ऐसी कृपा जो है वो कैसी किसी भी अवतार में नहीं किया, महाप्रभु जी के अवतार को समझना बहुत मुश्किल बात है दृष्टि से, हम समझेंगे लेकिन वो बुरा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कैसी कृपा है उनकी, क्या क्वालिफिकेशन हमारे पास में उन कृपा को प्राप्त करने का, कोई क्वालिफिकेशन नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं। पात्र या पात्र ना देखना मतलब कि हम लोग योग्य है कि नहीं वो भी देखते नहीं, बस हम केवल पति से पति अवस्था में है लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमको वो चाहिए, इतना ही क्वालिफिकेशन होगा ना तो वो तुरंत कृष्ण प्रेम को दे देते। इसलिए हमको भगवान के नाम के जब तक सुना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे परम 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 प्राप्ति है हमारे जीवन में, लेकिन हम उनको समझते नहीं, क्योंकि हमको बहुत आसानी से भगवान दे रहे हैं, बहुत पात्र या पात्र ना देखी दान हमारी योग्यता ना होते हुए हमको दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उसको ना समझ कर ऐसे ठीक है ना, हमने उसको 5 साल दान दिया है किसी गुरु को मंत्र देने के लिए, हाँ ना हमने कुछ 12 साल ढूंढा है जंगल में जाके गुरु को और ना प्राप्त करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, तो कभी हो सकता है कि हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे क्या चीज है, लेकिन समझना जरूरी है, बार बार महाप्रभु के औदार्य का महात्म्य सुनना जरूरी है, बार बार चैतन्य महाप्रभु कृपा कितनी अगाध है वो समझना सुनना जरूरी है, तो हमको होश आ जाए कि हमको क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास क्या है वो चीज जो हमको प्राप्त हुई है बिना किसी योग्यता के, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पूर्व जन्म के पुण्य के ना होते हुए भी हमको प्राप्त हुआ है, तो समझना बहुत जरूरी है। क्या लगा होगा बस मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, कौन सी बड़ी समस्या है, वो साधु जो थे वशिष्ठ मुनि जैसे वो जंगल में बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए तपस्या करते थे, पेड़ से गिरने वाले पत्तों को खाकर रहते थे, तब उनको भी प्रेम प्राप्त नहीं होता था, क्या कहते हैं कि जो तपस्वी ज्ञानी कपि योगी हजारों जन्मों तक तपस्या करते हैं बहुत पीड़ते अपने आप, उनको भगवान के पैरों में जो दिव्य नाखून है उनमें हजारों सूर्यों की किरणें निकलती है, उन हजारों किरणों का एक किरण भी दर्शन नहीं होता, और वही भगवान जो है जो प्रेम भक्त है उनके इशारों में नाचते हैं, जो गोपियां हैं वो कोई योगी और कोई ज्ञानी नहीं हो, तो कहते हैं नाचो हम ताली बजाएंगे आप नाचो फिर मक्खन मिलेगा, उनके मंथन के लिए वो गौरव थाम छोड़ के आते हैं छाछ और मक्खन खाने के लिए, ये प्रेम का शक्ति है। तो हमने वो समस्या भी नहीं कहे योग भी नहीं कहे कुछ भी नहीं किया और फिर भी हमको योग प्राप्त है, वो चीज मतलब एक्सेस है हमारे पास, हमने तो उसको अनुभूति नहीं किया, वी नॉट रियलाइज इट। इसलिए गौरव महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तो श्री कृष्ण भगवान ने जो भी लिमिटेड रखा था वो क्या कहते हैं सर्वधर्मम परित्याजम, पहले सबको छोड़ो फिर मैं आपको अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माहिता, ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं आपको कृष्ण प्रेम दूंगा मैं नया प्रेम दूंगा पापों से मुक्त करूंगा, नहीं बताया उन्होंने, कंडीशन रखा है उन्होंने कृष्ण भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भगवान भी देते नहीं है केवल गिरिजन लोगों को देते हैं, उनको जो ब्रजवासी भगवान को देते हैं। महाप्रभु जी ने क्या कहा है मैं एकदम आगे जाऊंगा, मैं जब कृष्ण भगवान कहते हैं जब गौरा महाप्रभु में जाऊंगा तो सब नियम बंधन सब छोड़ दूंगा कंप्लीटली, मेरा परिवार मेरे ब्रजवासी मेरा धाम के लोग ये सब छोड़कर मैं जितने भी लोग मेरे सामने आते हैं सबको दे दूंगा कंप्लीटली, ये मेरी अभिलाषा है कि मेरे सहन नहीं होता है कि मेरे जीव मेरे जो बालक हैं सब मेरे अंश हैं मेरे प्रिय अंश हैं मुझसे जुड़ा होकर दुनिया में तड़प रहे हैं मुझे सहन नहीं होता है, इसलिए मैं आऊंगा और अपने भी ऐश्वर्य का भोग का त्याग करूंगा और पुष्प भर में जाके भिक्षा मांगूंगा, लोग मुझे धन्यवाद करेंगे सन्यासी के रूप में कृष्ण प्रेम दूंगा। क्या कहा था उन्होंने क्या प्रभु जाओ सब ग्रस्तों के दरवाजे पे जाओ दरवाजे फटफटाओ और हाथ जोड़ के उनको विनती करो प्लीज पे कृष्ण नाम कृपा करके कृष्ण नाम दीजिए, और अगर दरवाजा फटते आपके ऊपर तो फिर फटफटाना और इस बार धन्यवाद करना प्लीज आप 10 बार 1000 बार दरवाजे को हमारे रूप में बंद कर सकते हैं लेकिन कृष्ण नाम दीजिए कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण ये हमारे जीवन का सर्वस्व सर्व ऐश्वर्य है प्लीज टेक इट लीजिए कृपा करके। और नित्यानंद प्रभु प्रकाश ठाकुर ने यही तो किया, हम पिछले अवतारों में नित्यानंद प्रभु ने तो हल और मुसल और गदा लेकर ऐसे अक्षरों को मारा एक झटके का दर्शन कर दिया धर्मपासुर को और प्रलंबासुर को, हाँ और वही चरण रू वही चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़ के जा रहे हैं प्लीज उतने से उससे भी अधिक राक्षस लोग कलयुग में उनके पास जा रहे हैं प्लीज कृपा करके लीजिए ये मेरी आपको विनती है, हाँ सबसे बड़ा धन देने को जा रहे हैं और विनती करते दे रहे हैं, कितनी कृपा हो सकती, सोचो अपने आप को भगवान ने कितना तुच्छ बना लिया। देखो आप उनके पास बेस्ट चीज है जो आपको जरूरत है, आपको आना चाहिए अपने से लेकर उनके पास, उनके पास पैर पड़ना चाहिए, विनय आना चाहिए, विनती करनी चाहिए, कुछ नियम का पालन करना चाहिए, आपकी कंडीशन आपकी है वो पूरी करेंगे आप, प्लीज हमको दे दीजिए। नहीं यहाँ उल्टा हुआ है, जिनके पास वो परम धन है वो आपके पास दरवाजे पे आ रहे हैं, ले लो प्लीज से प्लीज से प्लीज से, कोई बात नहीं आप आपकी हो, कोई बात नहीं आपकी होती भ्रष्ट है, इसको ले लो आप, इसको जपो खाली बस, कोई बात नहीं आप सुबह नहीं उठते काम को करो लेकिन करो। सब बेस्ट समय दिया है करने का, बेस्ट प्लान लेने के लिए, लेकिन क्या बोल रहे हैं ले लो आप। राधा पंडित जी जाते हैं जब भी वो क्या नाम उसका गाजी के पास, उतनी उनके अंदर महाप्रभु जी की कृपा है, वो रात को 12 बजे आके गाजी को बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान नाम कर लूंगा मैं, कृष्ण नाम कर लूंगा, आपने कृष्ण बोला तो आपने अभी लिया है नाम उनका, तो वो नाचने लगते हैं कि ऐसे पापी व्यक्ति का पाप भी नष्ट हो गया, केवल कर लूंगा उसमें बोलने में एक वाक्य होता है ना कृष्ण का नाम कर लूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण करने से भी कई हजारों पाप नष्ट हो सकते हैं, और पाप नष्ट होना ये हरि नाम का मेन लाभ नहीं है, ये साइड इफेक्ट है, हमारे होते हैं मेडिसिन में तो दवा देखो साइड इफेक्ट होता है, लेकिन साइड इफेक्ट मेन काम नहीं होता, तो जिस काम के लिए वो दिया गया है वो उसका मेन काम होता है। उस तरह से हरि नाम का काम क्या है, कृष्ण प्रेम को जागरूक करना हमारे लिए, और बाय द वे साइड बाय साइड पापों का नाश भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम लोग उसके लिए जब नहीं करते ना करना चाहिए, तो ये इतने अनंत कृपा जो है चैतन्य महाप्रभु की। 1486 साल जो है हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पवित्र साल है, हम लोग उसमें शायद इस शरीर में नहीं थे, लेकिन वो साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों है, उन्होंने ऐलान किया है कि मेरे जन्म के 10,000 साल तक जो भी व्यक्ति मेरे नाम का आश्रय ग्रहण करेगा वो गौरव धाम को प्राप्त करेगा, कृष्ण प्रेम को। कितनी कृपा है वहां पर, जैसे हमको सोचना नहीं चाहिए बहुत समय बाकी है, 9,476 साल बाकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दी नहीं, हमारा टिकट तो निकल चुका है, कभी भी यात्रा कर सकते हैं ना, वो गलत बात है, भयंकर कलयुग आगे आने वाला है, अभी भी भयंकर समय चल रहा है, आगे भी भयंकर समय आने वाला है, हमको वापस नहीं आना है इसके अंदर, इसी समय खत्म करना है। गौरवजी तो बात कर रहा था, इस दुनिया में इतना कष्ट है, इतना पीड़ा है, वी कैन नॉट वेट हियर लॉन्गर, अभी समय हमको वेट करने का प्लान नहीं करना चाहिए, इसी जन्म में जब भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, चैतन्य महाप्रभु के स्वर्ण युग के अंदर हम लोग जन्म ले चुके हैं, उनके जन्म के 10,000 साल के अंदर हम जन्म ले चुके हैं, हमारा जीवन काल उसी के अंदर आवृत्त है, कृपा के चक्र में आवृत्त है, इसी समय जाना है हमको नाम का आश्रय लेकर, वेट नहीं करना है, जो भी प्राप्त करना है, जो भी करना है अभी करना है, इसलिए कल जब हम आएंगे मंदिर में गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान से वादा करेंगे हम लोग, भगवान आपकी कृपा से हमको अभी खत्म करना है, वी डोंट वांट टू वेट, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय कलयुग में समय भी बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि 1,00,000 साल हमारी आयु है सत्ययुग की तरह, 10,000 साल की आयु है त्रेता की तरह, 1,000 साल आयु है द्वापर की तरह, 100 साल से आयु का आरंभ होता है, और जैसे कलयुग आगे बढ़ता है आयु घटती 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 जाएगी, लाइफ स्पैन जो है वो कम कम होते जाता है, हो सकता है हमारी आयु अभी 50-55 साल की है, आगे और कलयुग में जाएंगे तो 30 साल जिएंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ साल तो बचपन में जाएंगे, कुछ साल तो भोग लेने में जाएंगे, बाकी सब समय जो है वो खाना पीना खत्म कर और अर्निंग करने में जाएगा, पहले युगों में लोग 12 घंटे काम नहीं करते थे, कलयुग में केवल 2 रोटी की रोटी कमाने के लिए और इतना सारा छोटा सा पेट भरने के लिए 12 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ता, समय किधर है, देयर इज नो टाइम, इसलिए जितना कलयुग आगे बढ़ता है उतना चैतन्य महाप्रभु का औदार्य बढ़ते जाता है, ऐसे जय पता का महाराज ने इस समय माया को जाकर बहुत ऐसा अच्छा है सुंदर, कि जैसे जिस कृपा से उन्होंने अवतार लिया वो कृपा भी बढ़ती जा रही है, तो कलयुग का समय जैसे बढ़ते आगे जा रहा है तो समय पतन अधिक हो रहा है हमारा जीवन, उतनी इनकी कृपा जो है और ज्यादा प्रभाव मिलती जा रही है, ऐसे भी हमने और सुना है कि जितने बाकी धाम है भगवान के, जैसे कि नरसिंह क्षेत्र है, श्री वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, भगवान का द्वारका है, उसकी जो कृपा है वो जैसे कभी आगे बढ़ते जाएगा वो कम 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 होती जाएगी, और मायापुर धाम की कृपा जो है बढ़ती 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 जाएगी, माया पर अपनी कृपा बढ़ाते जाएगा, औदार्य जो है वो बढ़ते जाएगा, तो बाकी नाम का जो माया जो प्रभाव है वो कम कम होते जाएगा। श्री वृंदावन नाम हमारा लक्ष्य है अल्टीमेट पहुंचने का, लेकिन उसकी प्राप्ति जो है वो मायापुर धाम की कृपा से होगी, यानी गौरांग महापुर की कृपा से। तो इतना भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, हमको पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग हो रहा होगा, कैसे कृपा कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है हम जानते हैं, लेकिन हमको इतना समझना जरूरी है कि हमको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी प्रेम से एकाग्रता से मन लगाकर समर्पित होकर करना है, केवल करना है, बोझ बनकर नहीं करना है। बर्डन बड़ा बोझ सोना मना करना है, कब मैं टीवी देखूंगा, कब मैं धन कमाऊंगा, कब मेरी गाड़ी आएगी, सोलह माला कैसे करूंगा, हम इस बात से करेंगे तो नहीं होगा। मिनिमम मैक्सिमम 16 राउंड नहीं सोचना है, प्रभुपाद जी ने कहा था मिनिमम 16 राउंड, लेकिन क्या कहा था, चैंट ऑलवेज हमेशा। गुरु महाराज कहते हैं कि हर सांस में भगवान की याद और नाम स्मरण होना चाहिए, हर गति में, हर गतिविधि में, हर विचार में, हर क्षण में, हर सांस में भगवान का नाम बसना चाहिए, तब हमारे नाम का, भगवान के नाम का लाभ जो है पूरा हमारे ऊपर प्रकट होगा। कल के दिन में हम लोगों सबको प्रार्थना करनी चाहिए उत्कटता से कि हम तुच्छ हैं, पतित हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप उदार हैं, आपकी लीला और आपकी महिमा और आपकी करुणा अगाध और अमर्याद है, कृपा करके इस पतित पर भी एक दृष्टिपात कीजिए और हम पर भी वो, हमारे अंदर भी वो भावना जागरूक कीजिए कि हम भी आपका नाम ले सकते हैं। करना क्या है, हरे कृष्णा ही बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो ऐसे कहते हैं कि एक बार भी कोई व्यक्ति अगर हृदय से मुझे पुकारना है तो मैं कभी उसको भूलता नहीं हूँ। हम एक बार अगर अभी हमने समझो आज सब लोग मिलकर बहुत प्रेम से पुकार रहे उनको, वो कभी नहीं भूलेंगे, हम लोग उनको भूल सकते हैं, अपने मान नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जिसने उनको पुकारा है उसको वो जीवन भर नहीं भूलते हैं, बुरे भटके को कान पकड़ कर लेके आते वापस। हाँ इतनी करुणा करने का और क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है कोई व्यक्ति और, इतनी अनंत करुणा होने के पश्चात भी हम अगर सुधरते नहीं तो हमारे क्या हो गए। महाप्रभु कृष्ण भगवान महाप्रभु के अवतार में आने के बाद में इतना उदारी को बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, फिर भी अगर हम जागरूक नहीं हो रहे हैं, हम लोग जीवन का सर्व समान होकर मुर्दे की तरह भगवान को बोलकर घूम रहे तो वहां पर कौन कृपा कर सकता है, इसके और ज्यादा कृपा नहीं हो सकती। There is no more कृपा than this. तो और बढ़ रही है आगे आगे, लेकिन इसके ऊपर और लीला नहीं हो सकती है, ये तो परम सीमा है भगवान के औदार्य लीला की। हमारा केवल एक ही भावना हो सकती है, हम केवल रेडी हो सकते हैं बस, थैंक यू वेरी मच। हम लोग केवल वी कैन बी ओनली ग्रेटफुल कि हम लोग बस, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम लोग केवल धन्यवाद दे सकते हैं आपको, केवल कॉन्स्टेंटली धन्यवाद दे सकते हैं और आपने दिया हुआ जो धन है उसको ले सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हम लोग देने में कंजूस होते हैं लेकिन देने में भी कंजूसी होते हैं हमारे, भगवान उठा रहे हैं प्रेम का धन तो हम लेने में भी कंजूसी करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव इसलिए है, लेने में उदार होकर लेना चाहिए, जितना उदार होगा वो दे रहे हैं उतना उदार होकर हमको लेना चाहिए, तो हमारा जीवन जो है इतना पतित जीवन भी इतना प्रकाशित उज्ज्वल और दिव्य हो जाएगा हमारा जीवन उनकी कृपा से, उनकी कृपा के स्पर्श से। मैं सबके लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करूंगा कि हमारा पति ऐसा बने कि उनकी कृपा को समझकर उनकी कृपा को ग्रहण करें, बस इतना ही कर रहा है, उनके नाम के शब्दों को ध्वनियों को उच्चारण करते रहना है, स्मरण करते रहना है, दिन दिन में रात में सोते हुए उठते हुए बैठते हुए काम करते हुए मन के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में भगवान का नाम कीर्तन चलते रहना चाहिए। हमारे भक्तिसुर दामोदर महाराज हे पटाका महाराज इनका क्या विशेषता है, एक क्षण भी वो लोग रुकते नहीं थे, मैंने देखा है भक्ति सुर दामोदर महाराज को हमारे हॉस्पिटल के बोर्ड रूम से लिफ्ट में जा रहे हैं, हम इतना समय में भी वो गा रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये नाम की रुचि चिंतन मतलब बोल कुछ रहे तो कर रहे हैं लेकिन उनके बैकग्राउंड में वो हरे कृष्ण मंत्र और भगवान का धुन जो है वो चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, इसलिए हमारी भी आसक्ति ऐसा नहीं कि उनको प्राप्त है, उन्होंने उसके लिए मेहनत किया है उनको समझाया उसको, इसलिए ये आप सबके लिए शुभकामना है गौर पूर्णिमा की और प्रार्थना भी है भगवान के चरणों में कि उनकी कृपा हम पर हो जाए किसी जीवन में हम नाम को सही रूप में ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
एक और बात हमेशा चर्चा होती रहती है कि ऐसे कभी मौके पर जैसे यज्ञ होता है उसमें एंड में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, रावटे अर्पण करते हैं, तो ऐसे बोला जाता है कि अभी सोचो कि ये भगवान के लिए हमारे जीवन का आखिरी मंत्र है तो कैसे हम बोलेंगे, इसके बाद में नहीं उच्चारण कर सकते, वाचा खसर हो जाएगा। तो एक बार ऐसे बोलिए कि हमारे जीवन का आखिरी मंत्र है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
बिल्कुल सही बात है। चैतन्य महाप्रभु के गौरव को और विकसित करने के लिए ये दो चीज जय विजय है कि अपना काम पूरा करने के बाद दोबारा लौट के आए, क्योंकि उनके माध्यम से जो महाप्रभु जो असीम कृपा जो है प्रकट हो गए। सही बात है। और कोई प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।